आइए जरा पारे को पढ़ते हैं और एक एक मोती को चुनते हैं जो साहबा के आमाल की सूरत में है। सूरत अनफाल की आयत 41 से ये पारा शुरू होता है, 75 यानी सूरत के अंत तक रहेगा। फिर इसके बाद हम सूरत तौबा का भी कुछ हिस्सा इसमें पढ़ने वाले हैं। आउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير। पहला रुकू पीछे से शुरू था, यहाँ आयत 41 से 44 है। अल्लाह के हर हुक्म को मानना है और यहाँ आप लिख सकते हैं माले गनीमत की तकसीम कैसे अल्लाह ने बता दी। और जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मिसकीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है जो दिन हक और बातिल की जुदाई का दिन था, जिस दिन दो फौजें भिड़ गई थी यानी लड़ने लगी, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुम से नीचे था। अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुँचने में मुख्तलिफ हो जाते, यानी इख्तलाफ राय हो जाता, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर यानी यकीन जान कर हलाक हो और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। जबकि अल्लाह ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई, अगर इनकी ज्यादती दिखाता तो तुम बुजदिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों से खूब आगाह है। जबकि इसने बवक्ते मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया और तुम्हें इनकी निगाहों में बहुत कम दिखाया, ताकि अल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुँचा दे जो करना ही था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। ये है जी आपके इस पूरे पारे के थीम वाली आयात। इसमें अल्लाह ताला ने माल गनीमत के बांटने का वो असूल जिसका तذکرہ सूरत की पहली आयत यसअलूनका निल अनफाल में पूछा गया था उसका जवाब दिया। 40 आयतों में किरदार साजी, करेक्टर बिल्डिंग, असलहु ज़ात बैनकुम, और अल्लाह का तकवा, मोहब्बत रखो और कुरान की आयतों को पढ़ के तुम्हारे अंदर खशियत तारी हो। तो यहाँ माल गनीमत की बांट है। गनीमत अरबी में उस माल को कहते हैं जो दुश्मन से लड़ाई के नतीजे में हासिल होता है। पहले दौर में दुश्मन से जो चीज़ हासिल होती थी उसको मनहूस समझते थे, लिहाजा उसको जला देते थे। पहले अम्बिया के साथ यही रहा। नबी सल्लम की जो खूबियाँ या खसाइस आपने ख़ुद भी एक हदीस में बयान किए, उसमें क्या था कि आपके लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया था और सब छोटा बड़ा लाकर नबी सल्लम के पास पेश किया जाता, हत्ता कि सुई का धागा भी न छुपाया जाए। एक मौके पे एक शख्स को जख्मों में चूर देखकर कुछ लोगों ने कहा कि तो जन्नती है, तो आपने कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इसने माल गनीमत में से एक चादर चोरी की थी, वो इसके ऊपर आग की बनाकर उड़ा दी गई। इज्तमाही माल के बारे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। चोरी वैसे भी बुरी है, लेकिन वो एक शख्स की चोरी है, कल वो आपको पकड़ेगा। जब इज्तमाही माल, ख़ास तौर पे अल्लाह के रस्तों में जो माल जमा होता है उसकी पकड़ होगी, तो न जाने कितने लोग उस पे गर्दन पकड़ेंगे क़यामत के दिन। मैंने अक्सर देखा है कि लोग मस्जिदों में, मदरसों में ख़ास तौर पे, और ऑफ कोर्स पब्लिक प्लेसेस पे चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं, एक टिशू की जगह चार पकड़ेंगे। हरम में मैंने कई लोगों को नोट किया और टोका भी है कि जमजम लेते हुए एक गिलास की जगह चार गिलास, और पी के ढक से ख़त्म। क्यों? पतला था, गिर जाएगा। चाय की कॉफ़ी का कप एक की जगह चार लेंगे, नहीं कर सकते। एयरपोर्ट्स पे, जहाज़ों में, और ख़ास तौर पे फिर वो माल जो दीन के नाम पे जमा होता है, सबसे बड़ी तलवार सर पे यही लटकती है। इसीलिए जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट नूरुल कुरान के नाम पे अनाउंस होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन बनेगा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है। हम और आप इसमें माल गनीमत तो लेने वालों में नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारा काम क्या है कि इज्तमाही माल, हुकूमत की बातें, चीज़ें, पब्लिक प्लेसेस, एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। किसी के घर आते हैं उसकी चीज़ को सही इस्तेमाल कीजिए, किसी के घर मेहमान बन करके गया उसके पर्दों के साथ हाथ ना साफ कीजिए। लोग शादियों में देखा करें जो कुछ गंद घोल रहे होते हैं, अल्लाह में बचा के रखे। अब इसमें माले गनीमत की तरफ से जो पांचवा हिस्सा अल्लाह के रसूल और आपके रिश्तेदारों के लिए, ये क्यों था? एक सवाल है। इसलिए कि रसूल ने अपने आप को फुल टाइम दीन के लिए डेडिकेट कर दिया था। शुरू में तो हज़रत खदीजा का माल था और मक्का के 13 साल आप उसी की हिफाजत में रहे, लेकिन फिर बाद में जब आप मदीना में आए, अल्लाह ने आपको एक किस्म की हुक्मरान की हैसियत दी, तो आपकी भी तो ज़रूरियात थी। तो आप कई पॉकेट मनी कह लीजिए, आपका जेब खर्च कह लीजिए, आपका वजीफ़ा कह लीजिए, वो था। और मैदान जंग से जब भी कोई चीज़ आती तो उसके पांच हिस्से करके, फिर वो जो पांचवा हिस्सा है उसके फिर पांच हिस्से होते हैं। पहला अल्लाह के लिए, वो कैसे था, उसको अल्लाह के नबी को हक दे दिया जाता था कि जहाँ भी खर्च करें, लेकिन फिर उसमें एक हिस्सा आपका था, फिर एक आपके रिश्तेदारों का था। क्यों? इसलिए कि इन रिश्तेदारों ने, जिन्होंने रिश्ते की बुनियाद पे मुश्किल वक्तों में आपके दीनी मिशन में आपका साथ दिया था, उसका नजराना था। आज भी आप देखिए कि जो लोग माल की बांट सही रखते हैं ना, उनके पास बहुत बरकत होती है। तो आज से अपने लिए एक नियत कीजिए कि अल्लाह, मेरे पास जो दीन के एक माल हैं या उसकी कोई जिम्मेदारी है, 10 दफ़ा सोच के करूँगी। एक चीज़ एक जगह से 10 की मिलती है, चेक करूँगी, दूसरी जगह से वो 5 की मिल जाए तो मैं वो ले लूँ। हम अमूमन अपने माल के बारे में बहुत केयरफुल होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। आप अपने माल के बारे में शाह खर्च हैं या कंजूस हैं, ये आपका मामला है। बैलेंस है तो ठीक है। दीन की चीज़ के बारे में जितनी एहतियात की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए नहीं होती। आप देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी मारूफ बात है, माले मुफ्त दिले बेरहम। अपना माल खर्च करते हुए दुख होता है, चोट पड़ती है, जेब में हाथ डालते हुए, बैंक का चले अकाउंट नंबर ही लेते देते हुए, लेकिन दूसरे के माल की इतनी फिक्र नहीं होती। तो इस्लाम क्या चाहता है कि आप अल्लाह के इन सारे मामलात को अपना मामला बना लें। आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी खुल के ये नहीं कहा कि नूरुल कुरान को डोनेशन दो, क्योंकि जिनको फ़ायदा होता है वो खुद पूछते हैं हम क्या दें, किस मद में दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अभी भी अगर आप nurulquran.com पे जाएं तो आपको ऊपर प्रोजेक्ट्स और जो डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं और मुस्तकिल चलती हैं, जिसमें वेबसाइट्स हैं, जिसमें ऐप्स हैं, या जिसके अंदर हमारे ऑन साइट इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं को लिया जा रहा है, कहीं ख़रीदा जा रहा है, कहीं रेनोवेशन है। पिछले माशाल्लाह 4-5 साल में जहराबाद में 2-3 जगह बन गई, गुजरांवाला में एक छोटी सी जगह बनी, सियालकोट का भी एक छोटा सा मदरसा हमारे पास है। अब उनकी डे टू डे ज़रूरियात हैं, उनके बिजली के बिल हैं, उनकी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो खुद ही देख रहे होते हैं उनको खुद ही देना होता है। और अगर किसी जगह, जैसे राशन फंड, पिछले 2-4 सालों में जब राशन का तकसीम का इंतज़ाम हुआ, या आप लोगों के रमज़ान के जो कह लीजिए कि कफ़ारे हैं या अफितराना है, कोशिश करके एक एक चीज़ को संभाल के इस्तेमाल किया जाता है। उन दुकानों से जाकर साथी राशन खरीदते हैं जहाँ से होलसेल मिलता है। आम जाइए स्टोर से लेकर आ जाएं, आपका क्या जाता है, आपके कौन से पैसे लगे हैं? आप एक एक लीटर का ऑयल का डब्बा पकड़े, 5 डब्बे लें, और अगर आप वही जाके होलसेल से लेंगे तो उतनी कीमत में 7 डब्बे आ जाएंगे। इस सारी चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानी हद तक तो गवाही दे सकते हैं। गोल्ड आता है, स्टूडेंट्स ही देते हैं, आप नई लोग देते हैं, यकीन करें किसी को इजाज़त नहीं दी हुई कि आप गोल्ड बेच दें, क्योंकि आज औरतें जितना गोल्ड के मामले में बेवकूफ़ बनती हैं उतना कोई नहीं। जब तक जिंदगी है, जब तक समझ है, बूझ है, साथियों को ट्रेन करके उस तरीके से उस जेवर को बेचा जाता है कि ना देने वाले का नुकसान हो ना लेने वाले का। वो फ़ायदे जो सुनारों को देने हैं वो दिए जाएं, और उससे भी ऊपर लोग दे जाते हैं, क्योंकि किसी ने तो दे दिया, हमें तो फिर चीज़ भी मिल रही है। तो सारी बात का खुलासा ये है कि ये जिम्मेदारी की बात है। लेकिन जो माल गनीमत की बांट है ना, इसमें आपको चंद बेसिक असूल मिल रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। पहली बात है कि छीनी हुई चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपकी हो। जिसके हाथ में तीर आता, तलवार आता, किसी के हाथ में कोई चीज़ आती, सब लाकर नबी के हाथ में देते। ये भी एक बहुत बड़ा असूल है फ्रेंचाइज बनने का। आज भी आप देखिए कि जब आप ग्रो करते हैं ना, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। एक छोटा सा इदारा आपका होता है, सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है, लिमिटेड सी मनी आती है, अगर फीसें आती हैं तो थोड़ी सी आती हैं, डोनेशन भी आती है थोड़ी आती है, वो आप कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो ही आप फैलते हैं ना, आपकी एक ब्रांच इधर, एक इदारा उधर, अब समझ नहीं आती क्या हो रहा। अगर उस वक़्त स्ट्रांग रूल्स ना बने हो तो याद रखिए, नीयत किसी की भी बुरी नहीं होती, लेकिन शैतान अपना वार चला जाता है। तो लिहाजा जिसके पास जो चीज़ है वो सब हेड क्वार्टर पे जमा होगी, आमद भी होगी, जाने की भी होगी, इनकम भी होगी, एक्सपेंस भी। कुछ लोग कहते उधर से आए थे हमने उधर खर्च कर दिए, भाई क्यों, ये हुआ था वो हुआ था, तो इसमें ना आप तो नहीं रहेंगे, आपके साथ ही आपको देकर आपके पास यही करेंगे, और 2-4 साल बाद पूरा इदारा ख़त्म हो जाएगा, ये लिख के रख लें। मस्जिदें ख़राब हो जाती हैं जहाँ पैसे की आने और जाने की चीज़ों को सामने नहीं रखा जाता। तो माले गनीमत की बाँट से पता है कि आपने ये तीर उठाया, लेकिन लाइए इस ढेर में जमा कीजिए, आपने तलवार ली आप लाइए, और बाद में फिर अल्लाह के नबी इन सारे रूल्स के मुताबिक देंगे। ज़ाहिर है कि किसी ने घर तो लेके भी नहीं जाना होता, लेकिन जहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिसिप्लिन होगा, वहाँ बाद में मसले कम होंगे। शुरू में बात लोगों को चुभती हैं, ये बातें हमारी आज़ादी नहीं, हम अपनी मर्ज़ी नहीं करते, करिए बिस्मिल्लाह करिए, फिर जितनी मर्ज़ी करें हम, लेकिन अगर आप एक नाम यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ पहले से अथोराइज करवानी पड़ती है। आप में से कोई या बग़ैर किसी की फ्रेंचाइजी लिए मैकडोनल्ड का बर्गर बेच सकता है? उनके नाम पे कोई दुकान कोई एक स्पेलिंग के फ़र्क से कर सकता है? तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में क्यों क्वालिटी दे रही होती हैं, घर बैठे रॉयल्टीज भी खाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है। दूसरी बात ये है कि माल मिलने का ज़रूरी नहीं कि कोई हक हो, मेहनत और विरासत माल मिलने की कोई बुनियादें नहीं है। और फिर अगली बात ये है कि मलकियत की बुनियाद कब्ज़ा नहीं है, और दूसरों की मदद करने का बंदे के अंदर यकीन हो तो फिर ये बातें हैं। उसके बाद थोड़ी सी बात करना चाहूँगी ग़ज़वाए बदर पे। पारे का टॉपिक आपको दिए एहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल, ये आपको आयत 43-44 में मिल रहा है। अल्लाह ताला ने ग़ज़वाए बदर में मुसलमानों को अबू सुफियान के लश्कर की बजाय अबू जाहल के लश्कर से क्यों भिड़वाया? अबू सुफियान तो निकल गए थे, वो तो जद्दा के रास्ते निकल के मदीना को बाईपास कर गए, और मुसलमानों के सामने अबू जहल आ गया जो साजो सामान से भी भरा हुआ और फतह के नशे में चूर, गाने बजाने वाली लौंडियाँ साथ लेकर आया था कि जब फतह होगी तो जीतेंगे तो गाने गाएंगे, जश्न मनाया कि पता नहीं चला उसकी मौत उसको बुला रही थी। अब अल्लाह ताला ने इधर जो बात दिखाई ना, इसको आज समझिए, हम कभी आसानियाँ चाहते हैं, ये क्या है अबू सुफियान का लश्कर मिल जाए, लेकिन अल्लाह हमें मुश्किल हालात में डालकर आजमाइशों की चक्की में पीस कर कुंदन बनाता है। अल्लाह नहीं चाहते कि बंदा बातों से जीत जाए। आप देखिए कि हक को हक करना होता है ना, शुरू में ये काम दावत से होता है, अल्लाह के रास्ते में दावत दी जाए। 13 साल तक सहाबाए कराम और अल्लाह के नबी ने यह काम किया, हक को हक का, बातिल को बातिल का। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये काम तीरों और तलवारों से होता है, प्रैक्टिकल कामों से होता है, कभी आसमानी मौजजात की सूरत में और कभी ज़मीनी मौजजे की या गलबे की सूरत में। ग़ज़वा बदर ज़मीनी गलबे की एक पहचान थी। जब कुरैश मक्का निकले और फितरी तौर पे मुसलमानों का दिल था कि हमें वो लश्कर मिल जाए जिसके अंदर मालो दौलत है, लेकिन अल्लाह क्या चाहते थे? ये खाकुल हक पता क्या है, मैं रुक रुक के बोलूँगी, शायद 2-4 लफ्ज़ आप नोट कर सकें। अल्लाह चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिशन की सच्चाई लोगों पर खुल जाए। ये मक्का वाले और मदीना वाले और इर्द गिर्द वाले खूब देख लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सच्चा है, कि अगर इनके सामने इनसे ताकत और कुव्वत और हेड काउंट में एक 3 गुना बड़ा भी लश्कर आ जाएगा तो अल्लाह इनको फतह देगा। अगर अबू सुफियान के लश्कर से मुसलमान जीते तो कोई खूबी होनी थी? ये तो ऑब्वियस था। सिर्फ कुछ लोग थे बॉडीगार्ड के तौर पे जो अपने सामान तजारत की हिफाजत के लिए थे, ना हथियारे, उन्होंने पता नहीं क्या बन जाना था बेचारे। हाय मुसलमानों ने बेचारों को लूट लिया, इज्जत ही की बेइज्जती थी, बेइज्जती थी। अल्लाह ने वो इज्जत दी कि आज गोरे कहते हैं कि यौमुल फुरकान को पढ़ो। ग़ज़वा बदर ने मुसलमानों की इस सच्चाई को खोल दिया कि जिस पैगाम के साथ अल्लाह की मदद है, जो हक है, वो मोहम्मद के पास है। और सहाबा ने भी अपने आप को वहाँ खड़ा करके बता दिया कि जिएंगे तो इज्जत के साथ, मरेंगे तो इज्जत के साथ। बदर में कुरैश की फ़ौज की तादाद जब ज़्यादा हुई तो मुसलमानों में से कुछ कहते कि लड़ो, कुछ कहते ना लड़ो, इख्तलाफ होता, असल काम होने से रह जाता, आपस में लड़ते बिड़ते रहते। अल्लाह ने इसलिए इस पूरी जंग के बारे में सूरत आल इमरान में भी और यहाँ भी कभी तादाद के कम करने कभी ज्यादा करने की बात की है। लोग अक्सर पूछते हैं कितने फरिश्ते उतरे, मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ हुआ। अल्लाह हेड काउंट को नहीं जानता, तो अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी मैं कर दूंगा। ये उहद में हुआ था, तुम्हारे पास 313 ही हैं, लाओ, एक नहीं दो नहीं 5,000 मैं डाल दूंगा। वो मिसाल याद करें जो पीछे दी थी, जब बाप अपने बच्चे से प्यार करता है ना, तो देखता है कि बच्चा थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा है एक चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन पैसे पूरे ही नहीं हो रहे। एक दिन उसको ले जाता है उस दुकान पर और कहता है लाओ भाई इतने हैं तुम दो, बाकी मेरे से ले लो। अल्लाह ने ये अमल इस पूरे पारे में आपको कई दफ़ा दिखाना है। पता क्या चला कि अमल के दौरान जो हालात पेश आते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, और ये देखने के लिए होते हैं कि किस शख्स ने अपने हालात के अंदर किस किस्म का रद्द अमल पेश किया। ये जो हम रद्द अमल और रिएक्शन नहीं शो कर पाते ना, ये चीज़ असल में गड़बड़ करती है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं फिर मज़ीद बात होगी। इसमें से अल्लाह की रज़ा को पाने के अमाल नोट कर लीजिए। नंबर एक, फ़ैसलों का इख्तियार अल्लाह के पास समझना चाहिए। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, इसलिए अपने दिल को साफ़ सुथरा रखिए। तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, इसलिए बेफिक्र हो जाइए। माल गनीमत के असूल अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इनकी हिकमत को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज कीजिए। हिम्मत नहीं हारनी और आपस में इख्तलाफ नहीं करना। रुकू नंबर दो है आयत 45 से 48, अल्लाह के रास्ते पे साबित कदमी और जंग के आदाब नोट कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फ़ौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करते रहो और आपस में इख्तलाफ ना करना, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र और सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन लोगों जैसे न बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुदनुमाई करते हुए अपने घरों से चले, और वो अल्लाह की राह से रोकते थे, जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह इसे घेर लेने वाला है। जबकि इनके अमाल को, ये सारा अबू जहल के लश्कर का रोब और टीप टॉप थी, यानी जिस रौनत में वो आ रहा था उसकी तरफ इशारा है इधर। जबकि इनके अमाल को शैतान इन्हें जीनतदार कर दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ, लेकिन जब दोनों जमातें नमोदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया। सुराका बिन मालिक के रूप में आया था गजवे बदर में इबलीस, क्योंकि इसके कबीले के साथ कुरैश की लड़ाई थी। तो कुरैश से जब निकल रहे थे लोग अबू जहल की माइयत में, तो कुछ लोगों के दिल में आया ऐसा ना हो कि हम सारे ही मर्द निकल जाएं और पीछे औरतों बच्चों पे सुराका हमला कर दे। तो इबलीस तो ये सुन रहा था, फौरन सुराका बिन मालिक के रूप में आके कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी मोहम्मद से बहुत तंग हूँ, नाउज़ु बिल्लाह। वो चाहता था कि सारे निकलें और पीछे से महफूज हैं बच्चे और घर वाले, इसका तذکرہ। लेकिन जब मैदान जंग में गया और जब फरिश्ते उतरे तो किसी ने उसको देखा कि पानी की तरफ जा रहा है, पीछे से रोका, रहे भाई तुम कहाँ चले? तो उसने क्या कहा, आगे आ रहा कि इन्नी आ रहा माला तरउन, कहने लगा कि मैं कह रहा था कि लोगों में कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ, लेकिन जब दोनों जमातें नमोदार हो गईं तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया और कहने लगा मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, यानी फरिश्ते। इबलीस फरिश्तों की जगह पे नहीं ठहर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। झूठ बोल रहा है कि सच? झूठ बोल रहा है। शैतान अल्लाह से डरता होता तो ये कुछ करता? आज भी बहुत सारे लोग कहते बड़ा डर लगता है अल्लाह से, बड़ा डर लगता है, कोई नहीं लगता, सिर्फ एक नाम की बात है। अब इसमें आपको अल्लाह की मदद पाने के कुछ असबाब दिख रहे हैं, नोट कीजिएगा। यानी अल्लाह ताला ने इन आयात में आपको मुझे क्या बता दिया कि कामयाबी अल्लाह की मदद से आती है, मगर अल्लाह की मदद हमेशा असबाब के पर्दे में होती है। इफ़ वी विल नॉट यूज़ द मीन्स अल्लाह विल नॉट हेल्प अस। आज हम मुसलमान असबाब नहीं इख्तियार करते और कहते अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, तो एक जुमला बड़ी मोहब्बत से नोट कीजिएगा, मुसलमान अगर अपने मुमकिन असबाब को जमा कर दें तो बकिया कमी अल्लाह की तरफ से पूरी करके इनको कामयाब कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो बेअसबाबी इख्तियार करे, सबब इख्तियार ना करे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और घर में कह दी अल्लाह कर लेगा, अल्लाह का रसूल कर लेगा, तो याद रखिए अल्लाह ऐसा कभी नहीं करता कि उसकी मदद करे। असबाब के नंबर एक, मुसलमान इकदाम में पहल ना करें, वो अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगे रहें ताकि दुश्मन खुद चढ़ाई करके इनसे लड़ने के लिए आ जाए। फिर जब टकराव की सूरत पैदा हो जाए तो इसके मुकाबले में पूरी तरह जमाव का सबूत दें। फिर चौथा असूल क्या है कि अल्लाह की याद, दूसरे लफ्ज़ों में पूरी तरह से अल्लाह को याद रख के अपने हौसलों को बुलंद रखें, दिल मजबूत रखें। फिर लीडरशिप को फॉलो करें, सरदार के हुक्म के तहत मुनज़्ज़म रहें, ऑर्गेनाइज रहें, बाहमी इख्तलाफात को नज़रअंदाज करें। देखिए जहाँ मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे वहाँ इख्तलाफ तो होगा, पक्की बात है। कहीं भी कोई टीम होती है ना, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, कुछ सीधे से होते हैं, कुछ लीडर्स टाइप होते हैं, कुछ फॉलोअर्स टाइप होते हैं, कुछ का बैकग्राउंड बहुत कह लीजिए कि रिस्क टेकर होता है, कुछ ने कभी कोई रिस्क ही नहीं लिया होता। किसी का टोटल सारी ज़िंदगी का आउटकम 10,000 होता है, किसी ने 10 लाख 10 करोड़ भी देखे होते हैं। इतने मुख्तलिफ लोगों को जब आप इकट्ठा करें तो क्या करें, हलीम कैसे बनती है? आपने देखे मुख्तलिफ दालें मुख्तलिफ टाइम पे गलती हैं, चावलों का और हिसाब है, गंदम का कुछ और है, जौ का कुछ और है, क्या करते हैं आप? जो ज़्यादा टाइम लेती है उसको पहले डाल दो और जो कम टाइम लेती है उसको एंड पे कर दो, फिर एंड पे सबको घोट घाट दो। अल्लाह बैना कुलूबिकुम, जब तक आपके दिल जुड़े रहेंगे ना, आप अल्लाह के मोजज़े देखेंगे, फिजाए बदर पैदा कर, तेरी नुसरत को। ये सब आज भी होता है, जहाँ टीम टूटी, जहाँ टीम के दिलों में एक दूसरे पे बेतमादी आई, इल्ज़ाम उसने नहीं किया, तुमने नहीं किया, ये उसका काम था, वो करता, एक देर से आ रहा है, एक ने कह दिया मुझे सूट नहीं करता, ये मुझे फांसे नहीं करता, ये उसको नहीं करता, अल्लाह कहता बैठे रहो आराम से, कल तक तुम्हें जो कामयाबी मैंने तुम्हारे अच्छे किरदार और तुम्हारी मेहनत और जज्बों पर दी थी मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ, अब धक्का लगा कर इस गाड़ी को चला लो जितना चलाना है। तो इख्तलाफात से बचिए वरना टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर अपने इत्तेहाद से दुश्मन को मरूब करें, आपको तो इत्तेहाद बड़ी ताकत होती है। फिर सब्र करें, जोश की बजाय होश, यानी डोंट बी रिएक्शनरी। फिर जल्द कामयाबी के शौक में गैर पुख्ता इकदाम ना करें, यानी बगैर तैयारी के कर लें, कच्ची हलीम को ही चूल्हे से उतार लें, पेट में दर्द होगा। और अगली इनकी खूबी कि इनकी नज़र हमेशा आखिरी मंजिल पे हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखें, वक्ती मसाले हर मुनाफे पे नहीं हो। इन्हीं चीज़ों का नाम असबाब है और इन्हीं असबाब के पर्दे में अल्लाह की मदद आती है। अब अल्लाह ने इस दुनिया को चूंकि इम्तिहान के लिए बनाया ना, तो अल्लाह गैब में रहकर अपने सारे काम कर करवा रहा है। आज भी वो मुसलमानों की मदद करता है इन्हीं असबाब के अंदर रहते हुए। अगर हम ये सब ना करें, हौसला छोड़ दें, तैयारी के बगैर काम करें, आपस में इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, तो कभी उम्मीद ना कीजिए कि अल्लाह गैब का पर्दा फाड़ कर सामने आएगा और आपकी सारी बेतरतीबियों के बावजूद आपको खूबियाँ देगा और आपकी मदद कर देगा। असल बात भी यही है, सहाबे कराम इस बात को समझ चुके थे। आप देखिए कि काफिरों को अपनी ताकत पे घमंड था, वो फ़ख्र और नुमाइश कर रहे थे, बड़ाई के ज़ोम में मुब्तला थे, अल्लाह ने उसके मुकाबले में सहाबा को कामयाब क्यों करवा दिया? इसलिए करवा दिया कि वो हक के साथ थे। पहली बात एक नीयत कर लें कि मैंने साथ किनका देना है। गलत बस में बैठने वाला अपनी मंजिल पे पहुंचता, गलत ट्रेन का टिकट लेने वाला सही जगह पे पहुंचेगा, बोर्डिंग पास गलती से किसी दूसरे मुल्क का ले लें तो अपने मुल्क नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल अल्लाह की ये सुन्नत है कि अपने आप को पहले चेक करो कि मैं गलत लोगों का साथ तो नहीं दे रही, उसके बाद फिर आदाब रखो। सहाबा कराम ने जंगों के जो आदाब आयत 45-46 से लिए थे वो सब आपके सामने हैं। साबित कदमी इख्तियार की, अल्लाह को कसरत से याद किया, रसूल की इताअत की, आपस के झगड़ों से बचे और सब्र का मुजाहरा किया, और फिर फरिश्ते उतरे थे। रिवायत में आते रुफाया बिन राफे से, ये जंगे बदर में शरीक थे, कहते हैं कि जिब्राइल नबी सल्लम के पास आए और कहा आप बदर लड़ने वालों को अपने दरमियान कैसा समझते हैं, उनकी क्या शान है बदरी सहाबा की? आपने फरमाया सब मुसलमानों में अफसल समझता हूँ। या इसी तरह कोई और बात की तो फरिश्तों, जिब्राइल ने कहा इसी तरह जो फरिश्ते जंगे बदर में हाजिर हुए थे वो भी तमाम फरिश्तों से अफसल हैं। ये बुखारी की रिवायत है 1604, समझ आई आपको? जैसे अशरा मुबशरा अगर आपको जब बद्री सहाबा आपको इंसानों में दिख रहे हैं तो बद्री फरिश्ते भी थे। अल्लाह तो जानवरों का हक नहीं छोड़ता, इंसानों को क्यों ना देगा। फिर सहाबा का शुआर क्या था, फ्लो चार्ट देख लीजिए। आपस के इख्तलाफात को भुला देते थे, होते थे इख्तलाफ बहुत सारे, भुला देते थे। सब्र के पहाड़ थे, दिखावे और रियाकारी से बचते थे और लोगों को अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकते थे। इसीलिए वो रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन में शामिल हुए। आप और मैं क्या करें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह और रसूल की इताअत करें, अल्लाह की खातिर सब्र करना सीखें, घरों से अकड़ते हुए नहीं निकलना, दिखावे के लिए काम नहीं करना और अल्लाह के रास्ते में साबित कदम रहना है। आज हम अपनी बरातें लेकर शान दिखाते हुए शादियों के मौके पे इस तरह निकलते हैं जैसे कुफार जंगों में निकले थे। अल्लाह हमारे अंदर से खुदनुमाई निकाल दे। आगे है रुको नंबर 3, 49 से 58। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। इस यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरद। जबकि मुनाफिक कह रहे थे और वो भी जिनके दिलों में रोग था कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। आज भी लोग कहते हैं शी बिकम क्रेजी, इनको तो जुनून ही हो गया, सारा दिन बाहर रहती हैं, सुबह शाम इनको एक ही धुन है, बस इनको तो भूत सवारा, पता नहीं अब ये भूत कब उतरेगा, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि हकीकत क्या है कि जो भी अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह ताला बिला शुक को शुबा गलबे वाला और हिकमत वाला है। काश के तू देखता जबकि फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं, इनके मुंह पर और पीठों पर मार मारते हैं और कहते हैं तुम जलने का अजाब चखो। ये बस सबब इन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, मिसल फिरौनियों के हाल के और इनसे अगलों के। उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बस इनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला यकीनन कुव्वत वाला और सख्त अजाब वाला है। बदर के कुएं में फेंके गए थे वो कुफार जो मारे गए, इसी तरह फिरौन भी पानी में डुबोया गया था। ये थी वजह इन दोनों का यहाँ तस्करा आने की। और क्या, यह इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमा कर फिर बदल दे जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदल दें जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। मिसल हालत फिरौनियों के और इनसे पहले के लोगों के, उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाई, बस इनके गुनाहों के बायस हमने इनको बर्बाद किया और फिरौनियों को डबो दिया। ये सारे जालिम थे। तमाम जानदारों से बरतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो कुफर करें फिर वो ईमान न लाएं। जिनसे तुमने अहदो पैमान कर लिया फिर भी वो अपने अहदो पैमान को हर मरतबा तोड़ डालते हैं और बिल्कुल परहेज नहीं करते। बस जब कभी तू लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए तो इन्हें ऐसी मार मार कि इनके पिछले भी भाग खड़े हों। हो सकता है कि वो इबरत हासिल करें। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में इनका अहदनामा तोड़ दे। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क्या पता चला, अल्लाह ताला ने सहाबा की बेमिसाल शुजात का भी तذکرہ किया। दुश्मन की कसीर तादाद से घबराए नहीं, दुश्मन का डट के मुकाबला किया और अल्लाह के वादों पर पूरा भरोसा किया और सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे अमल किया। याद रखिए कि अल्लाह को गलती नहीं लगती। दुनिया में कोई अच्छा उस्ताद गलती से किसी को ज़्यादा नंबर नहीं दे देता। कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन ज़रूर होती है। तो इन आयात से क्या पता चलता है कि अल्लाह ने सहाबा को एहकाके हक के लिए चुना, उससे पहले उनकी खूब तरबियत की। ये बदर तो पहला मार्का है ना, अभी आपको अभी लिखा दूं कि इस बारे में आप बदर भी पढ़ रहे हैं और तबूक भी। बदर पहली जंग, तबूक आखिरी। बदर गलबा इस्लाम का फर्स्ट माइलस्टोन, तबूक लास्ट। ऐसे ही जैसे घर से निकले बदर, मंजिल पे पहुंच गए तबूक। दोनों इस बारे में जमा करके एक जुमला, एबताले हक, बातिल का बातिल होना, एहकाके हक, हक का हक होना और इब्ताले बातिल। अल्लाह अगर ये जंगे ना करता कभी किसी ने मानना भी नहीं था कि अबू जहल झूठा था। काबे का पर्दा थाम के कह रहा था कि अल्लाह तेरे नज़र में जो सच्चा है उसको पकड़, उसकी मदद कर। अल्लाह ने नबी की मदद करके उसी की बात बता दी कि ये सच्चे हैं तो सच्चा नहीं है। तो ज़िंदगी में जिए तो यकीन के साथ जिए, मरें तो यकीन के साथ मरें। अल्लाह ताला कैसे सहाबा को ईंटें बनाकर जोड़कर इस तरह कुफर के और बातिल के आगे खड़ा कर देते थे कि फिर उनके आगे को टिक नहीं सका। ये जो कहते हैं ना कि दुनी मिन की ठोकर से सहराव दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, वो ये खूबियाँ थी। और जो लोग अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ज़रूर उनकी मदद करता है, मगर अल्लाह की मदद हमेशा उस वक्त आती है जब अहले ईमान अल्लाह पर यकीन का इतना बड़ा सबूत दे दे कि वो लोग जिनके अंदर ईमान और यकीन नहीं, वो कह सकें कि ये तो मजनू हो गए हैं। जब तक आप इस रास्ते में मजनून करार नहीं दिए जाते, मान लीजिए कि अभी हक का हक होना आपके ज़रिए साबित नहीं होगा। फिर इसमें कुछ नेमतों के मिलने और खोने की बात है, तो याद रखिए कि आपको जो नेमत मिलती है ना, इसमें अल्लाह का कोई रूल नहीं है। अंगूठा छाप बंदे को सेठ बना देता है और मास्टर्स किए हुए बेचारे सड़कों पर रुलते हैं, जॉब नहीं मिलती। लेकिन नेमत मिलने के बाद उसका एक असूल है, वो बयान है इनायतों में, क्या आप उस नेमत के साथ करते क्या है। आपको पहली दफ़ा में तो अल्लाह ने ऐसी दीन का मौका दे दिया, दूसरी दफ़ा आपको मिलेगा आपके टैलेंट, आपकी तलब और आपकी तड़प की बुनियाद पे। और याद रखिए कि कुछ काम इज्तमाही होते हैं, उससे पहले आपके इनफरादी तज़किए तरबियत और आपके दिल के अंदर के खोट और आपके अंदर की सच्चाई को अल्लाह देख लेता है। 10 लोगों की टीम के अंदर अगर एक खोटा बंदा आ जाए तो वो काम करता है जो कीड़ा लगा हुआ एक से पूरी टोकरी के साथ करता है, पूरी टोकरी गल जाती है। या दीमक आपके घर के दीवारों और दरवाज़ों के साथ करती है, बाहर खूबसूरत ढांचा दिख रहा है, अंदर से खोखले हो चुके। ज़रा सा एक झटका आएगा हक को हक करने का और बातिल को बातिल करने का, और धड़ाम से वो टीम टूट जाएगी। जिनको अपनी पड़ी है ना मैं बकरी की तरह, वो नहीं जुड़ते, जुड़ जाते बाजार अपने अपने फ़ायदे फिर खींचेंगे, मुझे इससे क्या मिलता, साहबा ने ये सोचा ही नहीं था हमें क्या मिलता, वो कहते थे हम क्या दें। जब तक आप लेने वाले बनने की लाइन में खड़े हैं ना, एहकाक हक नहीं करेंगे। छोटे छोटे नेकियों के काम अल्लाह आपसे ज़रूर लेगा, कुर्सी बना दो, इधर टेबल लगा दो, इधर चेयर रख दो, इधर पानी रख दो, थोड़े दिन आप कर लो, अच्छा आप किसी का भिखार बन जाओ, आप किसी के बदले में आ जाओ, फुल टाइम ऑल इन ऑल चाबियां जिम्मेदार आपको अल्लाह तब बनाएगा जब आप इस लाइन से निकलकर देने वाली लाइन में आएंगे। और जब आप अपना सब कुछ दे देंगे ना, तो फिर अल्लाह आपको अपना सब कुछ देने लग जाएगा, क्योंकि अब आपके पास उसको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना। हम जब तक बचाते रहते ना, अल्लाह हमें काम नहीं देता, कहता जाओ पहले अपनी गिनाओ, पहले अपने दौलत का हिसाब लिखो, पहले अपने घर को चेक करो, जाओ ज़रा अपनी चीज़ों को देखो। और हम उसी में आधी से ज़्यादा नेकियां ज़ाया कर चुके होते हैं। अल्लाह सुबहान ताला लोगों को पहले मांझता है, रगड़ता है, स्क्रब करता है उनका, कहीं उनको पकड़ता है। तो एक जुमला लिखिए, अफराद के बिगड़ने से ही नेमतें छिनती हैं, और अफराद ही के बनने से दोबारा वो वापस भी मिल जाती हैं। कल तक आप बामे अरूज पे थे, अब आप नीचे क्यों आ गए? खुद से सवाल पूछे, हर जिम्मेदार खुद से पूछे, इसलिए कि आपका फोकस टूट गया, या फिर इसलिए कि अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी से वो गलत चीज़ें नहीं निकाली जो निकालने की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला इन सारी बातों से आपको मुझे यही सिखाता है कि अल्लाह के कानून में खरा और खोटा एक जगह पर नहीं रह सकता। अल्लाह हर एक को उसकी जगह पे उससे अलग करके दूसरी तरफ ले जाएगा, और जितना वादों को पूरा करेंगे, कमिटमेंट को निभाएंगे, उतनी अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आपने मैंने क्या सीखना है इस सारे हिस्से से? नंबर एक, अल्लाह पर कामिल भरोसा, निफाक में मुब्तला नहीं होना, अल्लाह की आयतों पर ईमान लाना है, मौत के वक्त की सख्ती को याद करना है और याद रखना है, और ख़यानत नहीं करनी और अहद नहीं तोड़ना।